नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक सर्वेक्षण में 68% अनुमोदन रेटिंग के साथ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बने। पश्चिम एशिया संघर्ष में शांति प्रयासों को झटका। ईरान ने अमेरिका का 15 सूत्री युद्ध विराम प्रस्ताव खारिज किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने खाड़ी देशों को निशाना बनाकर किए गए ईरान के हमलों की कड़ी निंदा की। बांग्लादेश 1971 के मुक्ति संग्राम के स्मरण में आज अपना 56वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और सैफ अंडर-20 फुटबॉल प्रतियोगिता में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में स्थान दिया गया है। अमेरिका की डेटा विश्लेषण कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट के नवीनतम सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री मोदी को 68% रेटिंग प्राप्त हुई है। 2 से 8 मार्च के बीच हुए सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री अन्य वैश्विक नेताओं से काफी आगे हैं। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय परमेलिन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यंग दूसरे स्थान पर हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 39% रेटिंग अंक के साथ शीर्ष 10 में शामिल नहीं हो सके हैं। ये ताजा सर्वेक्षण ऐसे समय में हुआ है जब प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में सार्वजनिक जीवन में गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल को मिलाकर भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले नेताओं में से एक बन गए हैं। पश्चिम एशिया युद्ध विराम की कोशिशें असफल हो गई हैं। ईरान ने अमेरिका द्वारा पेश किए गए 15 सूत्री प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार तेहरान को यह प्रस्ताव मध्यस्थों के जरिए प्राप्त हुआ। प्रस्ताव में अत्यधिक मांगें थी, इसलिए इसे खारिज कर दिया गया। अमेरिका के प्रस्ताव में ईरान से उसके परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने, मिसाइल क्षमता घटाने, हुर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने, क्षेत्रीय सशस्त्र समूहों को समर्थन कम करने और चरणबद्ध प्रतिबंधों में ढील स्वीकार करने की मांग की गई थी। इसके जवाब में ईरान ने संघर्ष विराम के लिए 5 सूत्री प्रति प्रस्ताव दिया है। एक रिपोर्ट।
पश्चिम एशिया में कूटनीतिक गतिरोध ऐसे समय में सामने आया जब पूरे क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां लगातार तेज हो रही हैं। ईरान और उसके सहयोगी समूहों ने इजरायली ठिकानों तथा खाड़ी क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए ताजा हमले किए हैं। अधिकारियों के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाल के दिनों में लगातार वार्ताओं में शामिल रहे हैं। वहीं पेंटागन संभावित सैन्य तैनाती में जुटा है। अतिरिक्त अमरीकी बल जिनमें 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के घटक भी शामिल हैं, क्षेत्र में तैनाती के लिए तैयार किए जा रहे हैं। तेल बाजार भी सतर्क रुख अपनाए हुए है और व्यापारी हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। चौथे सप्ताह में प्रवेश कर चुका यह संघर्ष अब भी कम होता नहीं दिख रहा है। इससे पश्चिम एशिया में और अधिक तनाव बढ़ने तथा वैश्विक ऊर्जा बाजारों के लिए जोखिम बढ़ने की आशंका गहरा गई है। विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए मैं प्राची वाजपेयी।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने खाड़ी के कई देशों को निशाना बनाकर किए गए ईरान के हमलों की निंदा की है। परिषद ने प्रभावित देशों को तत्काल मुआवजा देने का आह्वान किया है। ये प्रस्ताव जिनेवा में आयोजित एक आपात बैठक के दौरान पारित किया गया। ये बैठक खाड़ी देश और जॉर्डन के हमलों के मानवाधिकार प्रभावों पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी। परिषद ने इन हमलों को अनुचित बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। परिषद ने कहा कि इन हमलों ने प्रभावित देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन किया है। विश्व व्यापार संगठन WTO का 14वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन आज कैमरून में शुरू हो रहा है। ये सम्मेलन 29 मार्च तक चलेगा। 166 सदस्य देशों के मंत्री इस सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में वैश्विक व्यापार के भविष्य को आकार देने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। चर्चा के प्रमुख क्षेत्रों में WTO सुधार, कृषि, ई कॉमर्स और निवेश सुविधा शामिल हैं। ये सम्मेलन बढ़ते भू राजनीतिक तनावों, अमरीका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव और पश्चिम एशिया संघर्ष की पृष्ठभूमि में हो रहा है। अमरीका द्वारा लगाए गए शुल्क WTO सिद्धांतों के सर्वोपरि राष्ट्र नियम और निर्धारित टैरिफ दरों के अनुरूप नहीं माने जाते हैं। इस सम्मेलन में अमरीका द्वारा लगाए गए शुल्क की जांच की जाएगी। इस सम्मेलन को नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में विश्वास को पुनर्जीवित करने के एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखा जा रहा है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। बांग्लादेश आज 56वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 26 मार्च 1971 को आज ही के दिन बांग्लादेश ने पाकिस्तान से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। एक रिपोर्ट।
बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन और प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने आज सुबह ढाका के पास स्थित राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने एक मिनट का मौन रखा, जबकि सशस्त्र बलों के जवानों ने राजकीय सलामी दी। वरिष्ठ अधिकारियों, राजनीतिक नेताओं और गणमान्य व्यक्तियों ने भी समारोह में भाग लिया, जहां 1971 के मुक्ति युद्ध के शहीदों और राष्ट्रीय शांति और समृद्धि के लिए विशेष प्रार्थनाएं की गई। पाकिस्तानी सेना द्वारा ऑपरेशन सर्च लाइट के तहत की गई सैन्य कार्रवाई के बाद बांग्लादेश को 1971 में 9 महीने के युद्ध के बाद स्वतंत्रता प्राप्त हुई और 16 दिसंबर को उसे विजय प्राप्त हुई। इसी बीच भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर बांग्लादेश को हार्दिक शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में उन्होंने दोनों देशों के बीच गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भाषाई संबंधों पर प्रकाश डाला और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने तथा क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस दिन को पूरे देश में समारोहों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और मुक्ति युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करके मनाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार ढाका से नवल संघ परमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दीपेंद्र कुमार।
बांग्लादेश की पद्मा नदी में एक बस के गिरने से 14 लोगों की मौत हो गई है। ये दुर्घटना राजबाड़ी जिले के दौलत दिया फेरी टर्मिनल पर हुई। कल शाम ढाका जा रही बस के फेरी पर चढ़ने की कोशिश के दौरान अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरी। बस में लगभग 40 से 50 यात्री सवार थे। आज सुबह तक चले तलाशी अभियान के दौरान 18 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। 3 घायल यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बचाव अभियान अभी जारी है। लापता लोगों की तलाश की जा रही है। मरने वालों में अधिकतर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ उनकी बैठक अब 14-15 मई को पेचिंग में होगी। ये बैठक ईरान में अमेरिका के सैन्य अभियानों के कारण स्थगित कर दी गई थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वो और प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप इस साल के अंत में वॉशिंगटन में राष्ट्रपति शी चिनफिंग और मैडम पेंग की मेजबानी भी करेंगे। अमेरिका की सेना ने कल कैरेबियाई सागर में एक नौका पर हमला किया। इस पर मादक पदार्थों की तस्करी का संदेह था। इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई। यह अभियान ट्रंप प्रशासन द्वारा लैटिन अमेरिका में कथित तस्करों को निशाना बनाने के लिए चलाए जा रहे एक अभियान का हिस्सा है। इसके तहत पिछले साल सितंबर की शुरुआत से अब तक कम से कम 163 लोगों की मौत हो चुकी है। भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी को बड़ा कानूनी झटका लगा है। लंदन में उच्च न्यायालय की किंग्स बेंच डिवीजन ने उनके प्रत्यर्पण आदेश के खिलाफ कार्रवाई दोबारा शुरू करने की याचिका खारिज कर दी है। मामले को फिर से खोलने की अर्जी भंडारी फैसले के आधार पर दायर की गई थी। ये फैसला ब्रिटेन उच्च न्यायालय ने रक्षा सौदों के बिचौलिए संजय भंडारी के मामले में दिया था, जिसमें उन्होंने भारत प्रत्यर्पण की स्थिति में प्रताड़ित किए जाने की दलील दी थी और अदालत ने मानवीय आधार पर उनके प्रत्यर्पण से इनकार कर दिया था। माले में सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। भारत को पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ ग्रुप बी में रखा गया है। ग्रुप बी के पहले मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 2-0 से हराया था। शनिवार को अपने दूसरे मैच में भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय राजधानी के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दिल्ली 2026 के रेड कार्पेट कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मुंबई स्थित स्वतंत्र फिल्म निर्माता और प्रोड्यूसर भार्गव सैकिया ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के आयोजन के लिए दिल्ली सरकार को बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक सर्वेक्षण में 68% अनुमोदन रेटिंग के साथ विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बने। पश्चिम एशिया संघर्ष में शांति प्रयासों को झटका। ईरान ने अमरीका का 15 सूत्री युद्ध विराम प्रस्ताव खारिज किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने खाड़ी देशों को निशाना बनाकर किए गए ईरान के हमलों की कड़ी निंदा की। बांग्लादेश 1971 के मुक्ति संग्राम के स्मरण में आज अपना 56वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और सैफ अंडर 20 फुटबॉल प्रतियोगिता में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।